नमस्कार, CSIR CFTRI की अपनी पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भाग एक, अंक सात, 31 मई 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं केला, तत्फलम मधुरम, विटामिन, आवश्यक पोषक तत्व। आखिर क्यों कॉकरोच अस्वच्छता का प्रतीक है? डॉक्टर एच ए कृष्णैया, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी CSIR CFTRI के साथ एक साक्षात्कार। केला, कदली फलम, तत्फलम मधुरम। आप में से कई लोग संस्कृत के उस श्लोक से परिचित जरूर होंगे जिसमें सिर्फ दो पंक्तियों में केले के अपार गुणों की चर्चा की गई है। सिर्फ संस्कृत श्लोकों में ही क्यों, इसके छिलके के ऊपर भी तो कितने ही व्यंग और हास्य कविताएं बनी हैं। भारत के किसी भी कोने में जाएं, केला सबका चिर परिचित और पसंदीदा फल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, केले का पेड़ और इसके फल अपने आप में बहुत ही अनोखे हैं। जी हाँ, और आज हम बात करने जा रहे हैं केले के इसी अनोखेपन के बारे में। कदली फल यानी केला धरती पर मौजूद प्राचीन फलों में से एक है। अंग्रेजी में इसे एप्पल ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का सेब कहा जाता है। पुराने लेखों में ऐसा उल्लेख है कि धरती के प्रथम मानव इसके पत्तों का प्रयोग एकमात्र वस्त्र के रूप में करते थे। विज्ञान की भाषा में बात करें तो केला म्यूजेसिये परिवार का सदस्य है। यह वनस्पति जगत का एक छोटा सा परिवार है जिसके सदस्यों को सामूहिक रूप से म्यूसा के नाम से जाना जाता है। म्यूसा पैराडाइसिका सबसे प्रचलित केला है। म्यूसा एक्यूमिनेटा और म्यूसा बैल्बिसियाना केले के जंगली किस्म है। पैराडाइसिका इन दोनों जंगली किस्मों की हाइब्रिड किस्म समझी जाती है।
केला एकमात्र प्राकृतिक बीज रहित फल है। केले के पेड़ का जो भाग हम जमीन के ऊपर देखते हैं वह वास्तव में पत्ती का एक डंठल मात्र है, न कि असली तना। असली तना जमीन के नीचे छोटा सा प्रकंद होता है। केला दुनिया भर में सभी संस्कृतियों में लोकप्रिय है और इसे गरीबों के फल के रूप में भी जाना जाता है। स्माइली के आकार वाले इन फलों की उत्पत्ति भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। इस फल को दुनिया भर में उगाए जाने वाले फलों में सबसे पुराना फल माना जा सकता है। इस बात के साक्षात प्रमाण हैं कि लगभग 7000 साल पहले न्यू गिनी के ऊंचे इलाकों में केले की खेती की जाती थी। भारत में भी कोई भी धार्मिक समारोह केले के बिना कहां पूरा होता है। हमारे यहाँ यह हर सांस्कृतिक गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा है जिससे पता लगता है कि यह एक अरसे से हमारे साथ रहा होगा।
बनाना, यह शब्द अरबी शब्द बनान से निकला है जिसका अर्थ है उंगली। हिंदी और मराठी में इसे केला कहा जाता है, कन्नड़ा में बाले, वहीं तमिल और मलयालम में इसे वारप्पलम या वालक्यपलम और तेलुगु में अरटी पंडू के नाम से जाना जाता है। विविधता की बात करें तो मूल रूप से केले केवल दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टार्चयुक्त पौधा प्लांटेन और दूसरा मीठा केला। मुख्यतः दोनों एक ही परिवार के पौधे हैं, लेकिन प्लांटेन में उच्च स्टार्च की मात्रा होने के कारण इसे सब्जी की तरह पकाया जाता है तथा परोसा जाता है। प्लांटेन के कुछ प्रकार के फलों को यदि पकने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो भी केले के पौधों के समान रंग बदलते हैं, पर उनके जैसे मीठे नहीं होते। प्लांटेन पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं।
देखा जाए तो मीठा केला अधिक प्रचलित है। हम सभी जानते हैं इसे पकाया नहीं जाता बल्कि पक जाने पर ऐसे ही खाया जा सकता है, क्योंकि परिपक्वता यानी राइपनिंग के दौरान इसके स्टार्च शर्करा में बदल जाते हैं जो इसे मीठा स्वाद देते हैं। परिपक्व केले में 1% स्टार्च और 21% शर्करा होती है, जबकि प्लांटेन में पूर्ण परिपक्वता के बाद भी 21% स्टार्च और सिर्फ 1% शर्करा होती है। केले में विशेष स्वाद एवं सुगंध का कारण है इसमें उपस्थित कार्बनिक यौगिक आइसोएमाइल एसीटेट। परिपक्व केले में काले रंग के चित्ते हम सभी ने देखे हैं और इसका कारण है टायरोसिनेज नामक एंजाइम। हम सभी ने केले के सुंदर फूल को देखा है। यह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी है। कैसे, आइए जानते हैं। इन फूलों में अन्य पौधों के फलों के समान निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इसलिए इनके फलों में बीज नहीं होते। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में पार्थेनोकार्पी या अनिबेक फलन कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फल बीज वाले फलों से अधिक लाभकारी होते हैं। यह लंबे समय तक खराब नहीं होते और साथ ही उपभोक्ता द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं। केले के पौधे की एक और विशेषता यह है कि पौधे के फूलने और फल लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मुख्य डंठल के आधार पर जीवित साइड शूट या अंकुर होते हैं जिनसे नए पौधे विकसित होते हैं।
केले के बारे में दूसरी विशेष बात यह है कि इसकी जो किस्में हमें देखने को मिलती है वे असली संकर यानी रियल हाइब्रिड नहीं है, अपितु बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइड होकर विकसित हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये कोशिका के क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के द्विविभाजन या त्रिविभाजन से विकसित होती हैं। इस प्रकार केले की विभिन्न किस्मों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। आपको बता दें कि केले के कुल 500, जी हाँ 500 से भी अधिक प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ ही बाजार में उपलब्ध है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे सामान्य केला है हरा पीला लंबा स्माइल के आकार वाला। ऐसे ही कुछ और हैं: बेबी, बुर्रो, मंजानो, पूवन, मोर्टमन, बासरी, नेंद्रन इत्यादि। भारत में बासरी नामक किस्म की ही अधिक मांग रहती है, जिसका फल नरम मीठा बिना स्टार्च वाला सुगंधित और अम्ल रहित होता है। दक्षिण और पश्चिमी भारत में हल्का खट्टापन लिए रसताली और राजबाले किस्म पसंद की जाती है। वैसे सभी केले पीले या हरे नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू जावा की। यह होता तो बड़ा ही स्वास्थ्यकारी और स्वादिष्ट है, लेकिन बड़ा ही दुर्लभ। इसका स्वाद वेनिला आइसक्रीम की तरह होता है, जिस कारण इसे आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। अब जब केले के फल के बारे में बात चल ही रही है, तो हम अपने नंजनगढ़ रसबाले हन्नू को कैसे भूल सकते हैं, जो कि अपने अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए विख्यात है। कहते हैं यह गुण इसे नंजनगढ़ की जलोढ़ काली मृदा से मिला है। यह बहुत ही सीमित क्षेत्र में पनपता है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने बागवानी बोर्ड को सन 2005 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत GI यानी भौगोलिक उपदर्शन का तमगा प्रदान किया गया। इसके बाद से केवल मैसूरू के किसान अपने उत्पादनों को नंजनगुड़ बालेहन्नू के नाम से प्रचारित कर सकते हैं। आज नंजनगुड़ रसबाले विलुप्त होने की कगार पर है। असल में इसके पौधे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव फ्यूजेरियम विल्ट से ग्रसित होने लगे हैं। जैसे ही हमने बात की केले के फल में बीज नहीं होते और इसके नए पौधों जो कि मुख्य पौधे के आसपास ही पनप रहे होते हैं, वे भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। यही काम आते हैं विज्ञान एवं तकनीक। जैविक प्रविधि यानी परख नली के अंदर स्वस्थ पौधे के छोटे से ऊतक द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में नन्हे पौधे विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार फ्यूजेरियम विल्ट मुक्त स्वस्थ पौधे प्रयोगशाला में बनाकर फिलहाल इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है और बचाया जा ही रहा है। भले ही प्रथम मानव ने केले के पत्तों का प्रयोग स्वयं को ढकने के लिए किया हो, पर वास्तव में ये पत्ते विशेष पैकेजिंग पदार्थ हैं। आकार में बड़े और जलरोधक यानी वाटरप्रूफ होने के कारण ये किसी भी दावत में प्रयोग की जाने वाली पसंदीदा प्लेट है। केले के पत्ते पर खाना खाना कितना निराला अनुभव होता है। केले के पत्तों की ऊपरी सतह पर पॉलीफिनॉल्स उपस्थित होते हैं। इनमें एपिगैलो कैटेचिन गैलेट इंजीसीजी विशेष होता है। यह यौगिक और वैक्सी सतह मिलकर केले के पत्तों को एक विशेष फ्लेवर देती है। जब गरम गरम भोजन केले के पत्तों पर परोसा जाता है, इसकी ऊपरी परत पिघलकर भोजन में जा मिलती है और इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। आखिर ये केले हमें कौन से पोषक तत्व देते हैं और किस प्रकार पोषण देते हैं, जानेंगे आगे आने वाले अंकों में।
शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते विटामिन। विटामिन से भला कौन अनजान है, कोई बीमार हुआ नहीं कि शुरू हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स तथा विटामिन की गोलियां। लेकिन विटामिन न तो दवा है और न ही भोजन, ये तो वास्तव में भोजन का एक अभिन्न भाग है जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सभी विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हम मानवों समेत सभी वर्टिब्रेट्स के लिए अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। शरीर में इनका संश्लेषण न हो पाने के कारण इन्हें भोजन से लेना और भी जरूरी हो जाता है। वहीं कुछ जीव जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरियम विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें भोजन द्वारा विटामिन लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि विकास क्रम के दौरान सभी जंतुओं की विटामिन संश्लेषित कर पाने की क्षमता विलुप्त होती चली गई। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन लेने हैं, भोजन से इनकी सूक्ष्म मात्रा लिया जाना ही पर्याप्त होता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही प्रयोगात्मक जीवों पर किए गए प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण अच्छे स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए उतने लाभकारी नहीं है जितने कि दूध जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। सन 1913 में पोलैंड के रासायनिक वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने सबसे पहले चावल से एक ऐसा अमीनो एसिड पृथक किया जो कि बेरी बेरी का उपचार करने में सहायक साबित हुआ। उन्होंने इसे नाम दिया विटामिन। ग्रीक भाषा में वीटा का अर्थ होता है जीवन, वी आई टी ए एम आई एन ई, विटामिन। हालांकि वर्तमान में विटामिन शब्द के आखिरी अक्षर ई का प्रयोग नहीं होता। विटामिन को दो समूह में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। दोनों ही प्रकार के विटामिन संरचना तथा कार्य में बिल्कुल भिन्न होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है सी और बी तथा वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई एवं के। विटामिन सी जिसे स्कर्वी नामक रोग के उपचार में सहायक होने के कारण पहले एंटी स्कर्वी कहा जाता था, बाद में एकल पृथक एवं शुद्ध पदार्थ एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से पहचाना गया। वहीं दूसरा जल में विलेय विटामिन विटामिन बी एकल न होकर कई यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। इसके कुछ उदाहरण हैं रक्त निर्माण में सहायक फॉलिक एसिड, विटामिन B12, रक्त कोशिकाओं तथा ऊर्जा उत्पादन में सहायक एंजाइम्स तथा कोएंजाइम्स। विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। वसा के प्रकार तथा मात्रा का भोजन में विटामिन की उपलब्धता और शरीर में इसके अवशोषण तथा परिवहन पर सीधा प्रभाव होता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में इनका सेवन हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए केवल जंतु स्रोत से प्राप्त भोजन में उपस्थित होता है। हालांकि पौधों में उपस्थित कैरेटिन हमारे शरीर द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विटामिन कई कार्यों जैसे स्वस्थ दृष्टि, उचित वृद्धि, प्रजनन तथा कोशिकाओं की देखभाल के लिए आवश्यक होता है। इसके सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं यकृत, गुर्दे, अंडे का पीला भाग, दूध, पनीर और मक्खन। पीले तथा गहरे हरे रंग वाली सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पालक, कद्दू, आम, पपीता ये भी विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें कैरेटिन से रंग प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से दृष्टि में कठिनाई होती है, त्वचा के विकास में बाधा आती है और यह रतौंधी का कारण भी बन सकते हैं। विटामिन डी की संरचना एक हार्मोन की तरह होती है और इसके कार्य स्टेरॉल्स की तरह होते हैं। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा को विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह प्लाज्मा में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स या हड्डी की विकृति हो सकती है और वयस्कों में कमजोर हड्डियों की परेशानी हो सकती है। विटामिन डी की ओवरडोज सबसे अधिक हानिकारक होती है। विटामिन ई एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। यह कई जंतुओं में सामान्य प्रजनन के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के एकमात्र ऐसा वसा में घुलनशील विटामिन है जो विशेष कोएंजाइम का कार्य करता है। यह रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है और कोएगुलेशन यानी स्कंदन के लिए भी जरूरी है। विटामिन के आहार स्रोत हैं गोभी, फूलगोभी, टमाटर, अल्फा अल्फा और अन्य हरी सब्जियां। तो ये थी विटामिन्स के बारे में कुछ जानकारियां।
यहाँ पर हम लेंगे सूरहल्ली गवर्नमेंट स्कूल के सह अध्यापक श्री चन्नमल्ला स्वामी द्वारा भेजा गया एक प्रश्न। उन्होंने अक्सर बड़े बुजुर्गों को चावल के दाने मुंह में डालकर चबाते चबाते उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाते देखा है। उन्होंने पूछा है कि चबाकर चावल का परीक्षण करने से क्या वाकई में इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है क्या? आखिर इससे क्या पता चलता है? चावल को चबाकर परखने से कुछ हद तक यह पता लग सकता है कि चावल पुराने हैं या नए। जैसा कि हमने पिछले अंक में जाना था, नए चावल में अत्यधिक मात्रा में स्टार्च होता है जो चबाने के बाद मुंह से पेस्ट जैसा बन जाता है। लेकिन वहीं कुछ स्टार्ची चावल भी होते हैं जो कि कितने भी पुराने क्यों ना हो, चबाने के बाद मुंह में पेस्ट जैसे बन जाते हैं। तो इस प्रकार चावल की गुणवत्ता जानने का ये पैमाना सबसे विश्वसनीय तो नहीं पर पुराना जरूर है। चावल की अवस्था कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई है अथवा प्राकृतिक रूप से, यह तो हमें प्रयोगशाला में किए जाने वाली जांच से ही मालूम लग सकता है। चबाकर परखने से हो सकता है थोड़ा अंदाजा हो जाए, पर इससे सटीक रूप से यह नहीं पता लगा सकते कि चावल कितना पुराना होगा और इसमें स्टार्च की मात्रा कितनी होगी। तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच क्या वास्तव में गंदे हैं या वे गंदगी के प्रतीक हैं? यद्यपि हम अपने चारों ओर बहुत सारे कॉकरोच देखते हैं, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। कॉकरोच के बारे में हमने कुछ रोचक बातें जानी CSIR CFTRI के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर HE कृष्णैया से। प्रस्तुत है उन्हीं से चर्चा का हिंदी रूपांतरण। क्या आप हमें बताएंगे कि कॉकरोच रात में ही अधिकतर क्यों दिखाई देते हैं? क्या वे निशाचर यानी कि नॉक्टर्नल हैं, या फिर वो प्रकाश से डरते हैं?
नहीं, ये सत्य नहीं है। वास्तव में निवास स्थान और शरीर विज्ञान अलग अलग प्रजातियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। अमेरिकी और जर्मन कॉकरोच प्रजातियां आमतौर पर अपने जीवन का 70% दरारें और अंधेरी जगहों पर सिर्फ सुरक्षा उद्देश्य के लिए बिता देते हैं, लेकिन ओरिएंटल कॉकरोच वास्तव में निशाचर होते हैं।
भारत में कॉकरोच की कितनी किस्में हैं और स्वच्छता के संबंध से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है?
कीट प्रबंधन विशेषज्ञों ने दुनिया भर में कुछ 4000 से 4500 प्रजातियों की पहचान की है। उन कॉकरोच प्रजातियों में लगभग 40 से 50 प्रजातियां नुकसान पहुंचाने वाले कीट के रूप में कुख्यात हैं, क्योंकि वे आमतौर पर मानव निवास के साथ जुड़े हुए हैं। 40 से 60 तिलचट्टे प्रजातियों में से सामान्यतः मानव निवास के आसपास मुख्यतः 4 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। वो हैं अमेरिकन कॉकरोच, जर्मन कॉकरोच, ओरिएंटल कॉकरोच तथा ब्राउन बैंडेड कॉकरोच।
हम कभी कभार ही कॉकरोच को उड़ते हुए देखते हैं। कॉकरोच अन्य कीड़ों की तरह लगातार क्यों नहीं उड़ते?
कॉकरोच को रेंगने वाला कीड़ा भी कहा जाता है। भोजन की पहुंच के आधार पर ये अपनी आदतों को अनुकूलित कर लेते हैं, अन्यथा तो वे जमीन की सतह पर रेंगते ही हैं। वो भोजन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हाँ, कॉकरोच लगभग ठीक ठाक उड़ भी लेते हैं। विशेष रूप से जर्मन तिलचट्टे काफी अच्छे से उड़ सकते हैं। अमेरिकन कॉकरोच भी यहाँ वहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे और खाने की तलाश में अच्छे से उड़ सकते हैं। ओरिएंटल तिलचट्टे सामान्य रूप से नहीं उड़ते और वे केवल रात के दौरान ही बाहर आते हैं।
क्या आप हमें इनके जीवन चक्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? इनको अंडे हैच करने में कितना समय लगता है और कॉकरोच की औसतन उम्र क्या होगी?
वास्तव में जैसा पहले ही बताया गया है कि निवास स्थान और शरीर विज्ञान अलग अलग कॉकरोच प्रजातियों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अमेरिकन कॉकरोच को जीवन चक्र पूरा करने के लिए, मतलब अंडे से वयस्क अवस्था प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एक वर्ष का समय लगता है, वहीं जर्मन ओरिएंटल तथा ब्राउन बैंडेड कॉकरोच 3 से 5 महीने का समय लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन कॉकरोच में अंडे से बच्चा निकलने में न्यूनतम 50 से 60 दिन का समय लगता है, जबकि जर्मन कॉकरोच के लिए 28 दिन तथा ओरिएंटल कॉकरोच के लिए ये समय 16 दिन है। आमतौर पर एक बार अंडे से वयस्क अवस्था में आने के बाद अमेरिकन कॉकरोच 1 से 1.5 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि जर्मन कॉकरोच 1 वर्ष तथा ओरिएंटल कॉकरोच 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं।
हम नर और मादा कॉकरोच को कैसे पहचानेंगे? एक समय में एक कॉकरोच कितने अंडे देता है और अपने जीवन काल में कुल कितने?
नर और मादा के बीच अंतर करना बहुत आसान है। नर कॉकरोच के पेट का क्षेत्र बहुत पतला तथा नुकीला होता है, लेकिन मादा कॉकरोच में पेट क्षेत्र भारी और बेलनाकार होता है। आमतौर पर नर और मादा दोनों में पेट के क्षेत्र के पास विशेष तरह के बाल, जिसे एनल सरसी कहा जाता है, होते हैं, लेकिन नर में इसे एनल सरसी के अलावा इसका अतिरिक्त जोड़ी भी होती है। हम इसे सेक्सुअल सरसी भी कहते हैं। इस तरह से हम आसानी से नर और मादा में पहचान कर सकते हैं। सभी कॉकरोच प्रजातियां अंडे उथेका के रूप में देते हैं। उथेका का मतलब है एक कैप्सूल जिसमें कई अंडे एक साथ होते हैं। अपने जीवन काल में कॉकरोच जितने भी उथेका देता है उन सब में लगभग 16 से 20 अंडे होते हैं। जर्मन कॉकरोच अधिक उथेका दे सकते हैं। इनकी प्रत्येक उथेका में लगभग 30 से 40 अंडे होते हैं। वहीं ओरिएंटल कॉकरोच 8 से 10 उथेका दे सकता है। प्रत्येक उथेका में लगभग 16 अंडे होते हैं, तो इस प्रकार कुल 150 से 200 अंडे देते हैं।
कॉकरोच कैसी चीजें पसंद नहीं करते? ऐसा कहा जाता है कि कुछ इत्रों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्या यह सच है?
हाँ, ये सच है। ज्यादातर कॉकरोच ताजा कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते। जब वे किण्वित हो जाते हैं, यानी फर्मेंटेड हो जाते हैं, तो कॉकरोच उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तेज महक वाले पदार्थ अस्थायी रूप से कॉकरोच को खदेड़ सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थ विशेष तरल और कुछ आवश्यक तेल के मिश्रण से बने होते हैं, और ये आवश्यक तेल कीट गतिविधि को रोकने तथा कॉकरोच को खदेड़ने में सक्षम होता है।
क्या कारण है कि कूड़े कचरे के आसपास अधिक कॉकरोच पाए जाते हैं?
जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि तिलचट्टे किण्वित उत्पादों या किण्वित कार्बनिक पदार्थों के बहुत शौकीन हैं। यही कारण है कि इनको हम आमतौर पर सीवेज, डस्टबिन तथा कूड़े कचरे के आसपास देख सकते हैं।
कॉकरोच को दूर रखने के लिए आप क्या उपाय सुझाते हैं? क्या हम वास्तव में इसे दूर रख सकते हैं?
हाँ, ये संभव है। अगर आप अपनी रसोई में या अपने घर में स्वच्छता बनाए रखें, तो निश्चित रूप से अपने घर से कॉकरोच को दूर रख सकते हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि घर में कोई खाद्य सामग्री या पानी ऐसे ही बिखरे ना रहे। इसके अलावा हमें छोटे छोटे बिलों, शौचालय और बाथरूम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यही रास्ते हैं जिनसे कॉकरोच घर में घुसते हैं। हमारे घर से कम 5 मीटर की दूरी तक एक बफर जोन यानी कि साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे घर के आसपास मृत पत्तियों या झाड़ियों का कोई संचय ना हो। यदि मृत पत्तियां मौजूद हैं, तो वह कॉकरोच के लिए छुपने की बेहतरीन जगह है। फिर जैसे ही शाम होगी, वो निश्चित रूप से भोजन की तलाश में आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। यदि आप अपने घर के आसपास सफाई बनाए रखते हैं, तो आप घर से कॉकरोच को दूर रख सकते हैं।
अपार्टमेंट में हमें अधिक कॉकरोच क्यों मिलते हैं?
जी, आप केवल अपने घर में स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, लेकिन बात जब अपार्टमेंट की हो, तो वहाँ कई परिवार रहते हैं और वहाँ आमतौर पर एक घर से दूसरे घर के सीवेज पाइप जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से ये कॉकरोच आसानी से सब घरों में जा सकते हैं। इससे बचने के लिए बस आप सीवेज की लगातार सफाई बनाए रखिए। सीवेज चैम्बर तिलचट्टों का पसंदीदा स्थान है। आप कभी कुछ सीवेज स्थानों में देखेंगे तो केवल एक कॉकरोच नहीं बल्कि उनके झुंड पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि कॉकरोच कुछ फेरोमोन उत्पन्न करते हैं और इसके साथ वे पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ तरल पदार्थ मुंह से बाहर छोड़ते हैं। इस तरल पदार्थ और कुछ फेरोमोन द्वारा फिर अन्य कुछ तिलचट्टे आकर्षित होते हैं और इसी कारण कॉकरोच झुंड में पाए जाते हैं। इस कॉलोनी में सब कॉकरोच एक साथ रहते हैं और यहां तक कि अगर आप कॉकरोच को नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरह के कीटनाशक को कॉलोनी पर फेंकते हैं और एक या दो कॉकरोच उस कीटनाशक का सेवन कर भी लें तो वो भी बहुत है, क्योंकि दूसरे कॉकरोच जब उनके मुंह से निकले तरल पदार्थ को खाते हैं तो कीटनाशक पूरी कॉलोनी में फैल जाता है। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट या लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिससे सब कॉकरोच मर जाते हैं।
क्या कॉकरोच को नियंत्रित करने के लिए कोई पारंपरिक तरीका है?
हम संयंत्र आधारित उत्पादों का उपयोग करके तिलचट्टों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशिष्ट गंध वाले पदार्थ हैं जो विशेष तरल और कुछ आवश्यक तेल का मिश्रण है। इस आवश्यक तेल में एक प्रकार की गंध होती है जो कि तिलचट्टे को अस्थायी रूप से हटा तो सकते हैं, लेकिन किसी पारंपरिक विधि का उपयोग करके इनको पूर्ण नियंत्रण करना मुश्किल है। साफ सफाई बनाए रखने से हम कॉकरोच को नियंत्रित करते हैं। यदि घर में उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वे अंडे भी नहीं देंगे और निश्चित रूप से भोजन की तलाश में कहीं और जाएंगे। धन्यवाद।
तो प्रिय श्रोताओं, यह था थाली टेल्स का 7वां पाक्षिक अंक। आशा है आप सभी ने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है सुश्री माधुलांबिका एवं सुश्री अजना ने। इसका हिंदी रूपांतरण किया है सुश्री अनीता एस, सुश्री सुरुचि नौटियाल, सुश्री प्रतिभा सिंह ने, तथा अपनी आवाज दी है श्री राजदीप सिंह, सुश्री सुरुचि नौटियाल, सुश्री प्रतिभा सिंह और सुश्री वंदना पद्मनाभन ने। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरू द्वारा निर्मित और निशुल्क वितरित की जाने वाली पाक्षिक ऑडियो पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। श्रोतागण खाद्य तथा इससे जुड़े मुद्दों पर अपने प्रश्न एवं सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा 9449120618 पर भेज सकते हैं या सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के आगामी अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।